पाला है हमने आपको, आपको देखकर आपके मन की बात बता सकते हैं हम। आपकी आंखों में भले ही आरवी के लिए नफरत झलक रही हो, पर वही आंखें आपके प्यार की गवाही दे गई, पर आपको इसका एहसास ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि हमें गलतफहमी है, पर सच तो ये है कि आप या तो अपनी बदलती फीलिंग्स को पहचान नहीं पा रहे या जानबूझकर अपनी भावनाओं को अपने गुस्से के नीचे दबा रहे हैं। आपके और आरवी के बीच सब ठीक होते होते अचानक ही बिगड़ गया, तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी जो आप हम सबके साथ साथ खुद आरवी से भी छुपा रहे हैं, पर आप उसे ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं पाएंगे। हमें हमारे महादेव पर पूरा विश्वास है, उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को जोड़ा है, तो अब सब ठीक भी वही करेंगे। आज तक वो बच्ची बिना किसी गुनाह के सजा काटती आ रही है, उन्हें उनके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। अर्पिता जी ने हाथ जोड़कर मन ही मन महादेव से दोनों के लिए प्रार्थना करते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। हॉल में बैठी आरवी ने शान को गुस्से में बाहर जाते हुए देखा, पर रोक न सकी, पर सूनी आंखों से उसे देखती रही। अगर महीने भर पहले की बात होती तो वो हक से उससे सवाल करती कि कहाँ जा रहा है, पर अब बात अलग थी, उसे शान से सवाल करने का हक ही नहीं था। देखते ही देखते शान उसकी आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद अर्पिता जी वहां आई तो आरवी की निगाहें उनके तरफ घूम गई, लेकिन अर्पिता जी जाकर सुभाष जी के पास बैठ गई। डिनर में टाइम हो गया था, आरवी ने शान के लिए खुद डिनर बनाया। अर्पिता जी ने उसे फोन भी किया, पर उसने लेट होने का कहकर फोन काट दिया। सबने डिनर किया पर आरवी ने नहीं किया। अंशु को खिलाया, फिर सुभाष जी के पास कुछ देर रही और फिर अंशु को सुलाने रूम में चली गई। रात के करीब 1 बज रहे थे जब शान ने कमरे में कदम रखा। आज फिर वो ड्रंक था, अपनी फीलिंग से लड़ना आसान तो नहीं था। आरवी को तकलीफ दे रहा था तो उसके साथ टूट तो खुद भी रहा था। जिससे प्यार हो उससे नफरत जाहिर करना बेहद मुश्किल था। पल पल खुद से एक जंग लड़ रहा था जिसमें जीत भी वही रहा था और हार भी उसी की हो रही थी। भले ही शान ड्रंक था पर अब भी उसे होश था। उस अंधेरे कमरे में बस बेड के साइड में जलते लैंप की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसी रोशनी में वो बेड के तरफ बढ़ गया जहां सामने ही आरवी बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो रही थी। शान उसके पास आकर खड़ा हो गया और आरवी को देखने लगा। आरवी का उल्टा हाथ उसके पास सोई अंशु के सर पर था। चेहरा एक तरफ को हल्का झुका हुआ था जिन्हें जुल्फों के बादल ने काफी हद तक ढका हुआ था। पलकें झुकी हुई थी, शायद उसका इंतजार करते हुए बैठे बैठे ही सो गई थी। शान ने उसके चेहरे पर से बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक ही हाथ पीछे खींच लिया। कुछ पल खामोशी से एकटक उसके चेहरे को देखने के बाद उसने बेड के साइड टेबल के ड्रॉवर से क्रीम निकाली और उसके सीधे हाथ को अपने हाथ में थामकर देखने लगा। उंगलियों की सूजन कुछ कम हो गई थी पर अब भी वहां खून जमा था जिस वजह से वो एकदम लाल हो रखा था, पर शायद अब उसको दर्द कुछ कम हो रहा था इसीलिए इतने सुकून से सो रही थी। शान ने ही उसे ये तकलीफ दी थी और अब उसकी खुद की आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। यही तो सबसे बड़ी विडंबना थी कि वो अपनी नफरत में उसको दर्द देना चाहता था और देने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसे तकलीफ में देखकर खुद तड़प उठता था। ना नफरत निभा पा रहा था और ना ही मोहब्बत जता पा रहा था, बस पिस रहा था इस प्यार और नफरत के पाटों के बीच। शान ने एक नज़र सोती हुई आरवी को देखा और जब उसे विश्वास हो गया कि वो गहरी नींद में सो रही है तो उसने बड़े ध्यान से उसकी उंगलियों पर वो क्रीम लगा दी, फिर खुद जाकर सामने लगे सोफे पर लेट गया। आरवी को देखते देखते ही उसकी आंख कब लगी उसे इसका एहसास तक ना हुआ। दूसरी तरफ कुछ इसी के आसपास अर्जुन भी घर पहुंचा था। आज वो खुश तो बहुत था पर निया के लिए उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। सुबह सुबह ही उससे बहस हो गई थी और ऐसी हालत में वो निया को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए जितना हो सकता उससे दूर ही रहता ताकि उसकी बातें निया को दुख ना पहुंचाएं। यही सोचकर वो देर से घर लौटा। रोज की तरह आज भी निया सो चुकी थी। अर्जुन ने जाकर चेंज किया, फिर निया के पेट के पास आकर बैठ गया और प्यार से उसके पेट को सहलाते हुए बोला, हेलो चैम्प, आप जाग रहे हैं ना? डैडी को पता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, आप जरा ज्यादा देर हो गया, उसके लिए डैडी आपसे माफी मांगते हैं। आगे से दोबारा कभी आपको इतना इंतजार नहीं करवाएंगे। आपको पता है आज डैडी ने पहली बार आपको देखा, इतने छोटे हैं और अपनी माँ के अंदर हैं। डैडी आपको छू भी नहीं सकते पर आप उनके स्पर्श को महसूस करते होंगे ना? अभी तो आपके हमारे पास आने में काफी वक्त है पर डैडी तो बहुत बेताब है आपको अपनी बाहों में लेने के लिए। काश जल्दी से ये 6 महीने खत्म हो जाएं और आप डैडी के पास आ जाएं, फिर बेबी और डैडी हमेशा साथ रहेंगे। अभी तो आप अपनी मम्मा के अंदर हैं इसीलिए डैडी आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते। आपसे बात करने के लिए भी मुझे आपकी मम्मा के सोने का इंतजार करना पड़ता है, पर जब आप डैडी के पास आ जाएंगे तो डैडी आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको ढेर सारा प्यार करेंगे, कभी आपको मम्मा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हमारी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया होगी जिसमें आप, डैडी और आपके दादू होंगे और हम बहुत खुश रहेंगे। डैडी तो बहुत एक्साइटेड है,
आप भी एक्साइटेड हैं ना डैडी के पास आने के लिए? अभी आप बोल नहीं सकते, तो इसका जवाब हम आपसे बाद में लेंगे। अब आप आराम कीजिए, डैडी कल फिर से आपसे बात करेंगे। अर्जुन ने प्यार से निया के पेट को चूम लिया, पर यह किस निया के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए थी। अर्जुन जाकर सोफे पर लेट गया। यहां उसने अपनी आंखें बंद की और वहां निया की पलकें हिलने लगी और आंखों के कोरों से एक बूंद आंसू निकलकर तकिए को भिगो गया। मतलब साफ था कि वो सोई नहीं थी, या शायद अर्जुन के बोलने पर उसकी नींद खुल गई थी। अर्जुन ने अपने परिवार में उसे शामिल नहीं किया था और कहीं ना कहीं यही बात उसे चुप सी गई थी, पर वो कुछ कह ना सकी। यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। शान को वापस आए हुए एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया था, पर आज भी उसका अंतर्द्वंद चालू था। हर बार अपनी बातों और हरकतों से आरवी को आहत करने की कोशिश करना, फिर उसका दर्द देखकर खुद तड़प उठता, खुद ही जख्म देता और छुपकर मरहम भी खुद ही लगाता। उसके आंसुओं की वजह भी खुद बनता और उन्हें देखकर बेचैन भी खुद ही हो जाता। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आरवी से दुश्मनी निभा रहा है या खुद से। आरवी इन दिनों कितने ही बार उससे उसकी इस बेरुखी की वजह पूछ चुकी थी, पर हर बार शान कुछ ऐसा कह जाता जिसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी और मजबूर हो जाती खामोशी से उसकी हर ज्यादती सहने के लिए। अर्पिता जी शान से बात जानने की हर कोशिश कर चुकी थी, पर असफल ही रही। शान जानबूझकर किसी को मौका नहीं देता था कि उससे कोई कुछ सवाल करे, जब तक घर में रहता अंशु के साथ रहता या फिर बाहर ही रहता। देर रात को नशे में धुत घर लौटता, आरवी उसका इंतजार करती मिलती तब भी उसको नजरअंदाज करके सीधे सोने चला जाता। वो उसे हर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता था, पर उससे ज्यादा तो खुद को हर्ट कर जाता था। उनके रिश्ते में तनाव वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था, जिसे अब घर में सभी देख पा रहे थे पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अंशु के सामने तो शान के होने पर आरवी जाती ही नहीं थी, वरना वो उसके सामने भी कुछ गलत कहता या करता जिससे अंशु को हर्ट होता, इसीलिए वो उन दोनों से दूर ही रहती थी।
दूसरी तरफ निया और अर्जुन का रिश्ता भी ऐसा ही चल रहा था। अर्जुन उसके सोने के बाद घर लौटता और उठने से पहले चला जाता, पर उसकी पल पल की खबर माला से लेता रहता। सृष्टि की अर्जुन से लगभग रोज ही बात हो जाया करती थी। रश्मि और रेहान का रिश्ता भी ठीक चल रहा था। रश्मि तो आरवी की जिंदगी में आए तूफान से बिल्कुल अनजान थी, पर कुछ परेशान जरूर रहती थी, जिस पर रेहान उसको समझा देता कि सब ठीक है। शान और आरवी के बिगड़ते रिश्तों से तो रेहान खुद भी अनजान था, पर शान में इन दिनों आए बदलाव वो भी देख और महसूस कर पा रहा था। बहुत बार उसने पूछने की कोशिश भी की, पर शान के मुंह से कुछ भी निकलवा पाना इतना आसान भी तो नहीं था। वो खुद परेशान था, पर जब तक शान कुछ पता ना दे वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। आज शाम से आरवी शान का इंतजार कर रही थी, पर वो घर नहीं आया। बस उसके असिस्टेंट का फोन आ गया था कि वो देर से आएगा। बाकी सबको खाना खिलाकर सुलाने के बाद आरवी आज नीचे हॉल में चली गई और बेचैनी से यहां से वहां चक्कर काटते हुए शान के आने का इंतजार करने लगी। 12 बजे, फिर 1, फिर 2, पर शान नहीं आया। हद तो तब हो गई जब रात के 3 बजने पर भी शान घर नहीं लौटा। इतनी देर वो कभी नहीं करता था। आरवी को घबराहट होने लगी, उसकी चिंता सताने लगी। चाहे शान का बर्ताव उसके लिए जैसा रहा हो, पर वो तो उससे मोहब्बत करती थी, तो उसके लिए फिक्रमंद होना तो लाजमी ही था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहुत सोचने के बाद उसने रेहान को फोन लगा दिया। कुछ रिंग बाद फोन पिक हुआ और दूसरे तरफ से रेहान की चिंता भरी आवाज आई, हेलो भाभी। इस आवाज के साथ अजीब सा शोर भी आ रहा था उस तरफ से, पर आरवी तो शान के लिए परेशान थी, उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और चिंता भरे स्वर में बोली, हेलो, माफ कीजिएगा इस वक्त आपको परेशान किया, पर हमें आपके अलावा किसी का ध्यान ही नहीं आया जिससे मदद मांग सके। अरे भाभी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप बताइए क्या बात है। वो आपके दोस्त अभी तक घर नहीं आए हैं, इतनी देर तो पहले कभी नहीं की। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ हैं और किस हाल में होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ होंगे? आरवी की बात सुनकर रेहान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सर घुमाकर देखा। बार काउंटर पर बैठा शान ड्रिंक कर रहा था और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो काफी पी चुका हो। एक्चुअली रेहान इस वक्त एक नाइट क्लब के बार में था। रात के इस पहर में वहां कुछ ही लोग मौजूद थे, कुछ लड़के तो कुछ लड़कियां, और सभी नशे में झूम रहे थे। आज शाम को रेहान शान से मिलने गया था, पर उसके सवालों से भागने के लिए शान यहां चला आया। रेहान भी उसके पीछे पीछे यहां पहुंच गया और तभी से वो शान को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जाने उसके मन में ऐसा कौन सा दर्द है जिसे भुलाने के लिए वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था।